ओम शांति। 24 दिसंबर 2023 आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को क्या करना है? खत्म। और अपने निजी संस्कार, निजी संस्कार कौन से हैं? निजी संस्कार किसे कहेंगे? जो आत्मा के संस्कार है। क्योंकि अब हमारे जो जीवन में संस्कार बने हुए थे वो बने हुए थे देह अभिमान के, क्योंकि हम अपने को आत्मा ना समझकर शरीर समझते थे और उसी आधार पर हमने अपने संस्कार बनाए थे। और अब हमें समझ में आया कि हम ये देह तो है ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। तो निजी संस्कार माना आत्मा के संस्कार धारण करने, उन संस्कारों को खत्म करना है जो देह के आधार से बने थे। देह के आधार से मेरा देह के संबंधियों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उनके प्रति, उनके प्रति, ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है। परंतु आत्मा के लिए जो करना है वो हम भूल गए थे। तो अब हमें अपने निजी संस्कार धारण करने वाले, और जब हम निजी संस्कार में आ जाएंगे, केवल हमारे पास आत्मा के ही संस्कार होंगे, इस देह का कोई संस्कार हमारे जीवन में नहीं होगा, तब हम घर जाएंगे, तब हम घर जाएंगे। क्योंकि देह का संस्कार जुड़ जाता है देह के कार्मिक अकाउंट के साथ। इस संसार में आने के बाद हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो देह के संस्कारों के साथ जुड़ जाते हैं। अब देह का हिसाब बराबर होगा तो देह के संस्कार भी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तब सिर्फ आत्मा के संस्कार रहते। तो हमें अभी से अभ्यास करना है कि मेरे जो आत्मा के संस्कार हैं वो जागृत होते जाएं और देह के संस्कार मर्ज होते जाएं। वो मर्ज होते ही जाएंगे, यदि कोई पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा, मर्ज तो उसके भी होंगे, क्योंकि देह का हिसाब किताब बराबर होता जाएगा तो वो ऑटोमेटिक मर्ज होता जाएगा, उसका फिर पार्टी नहीं है। ठीक है। इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है कि जो जानते हैं वो पुरुषार्थहीन हो जाते हैं क्या? इस विषय पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। रिवाइज कर रहे हैं मुरली को। बाबा ने ये 3 अप्रैल 1997 को चलाई। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के, आज बाप दादा चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन, जो विश्व का बाप है उसके प्यार में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है। कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, 5000 साल बाद आकर के मिले हैं। मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान है। बाबा के बच्चे वर्तमान समय इतने महान है। कितने महान है? जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के स्वरूप में, चाहे महान आत्माओं के रूप में, चाहे पद्मपति धनी कितने अरबों खरबों पद्म रुपए हैं जिनके पास, नोटों की गिनती नहीं की जा सकती, उन आत्माओं के रूप में किसी का भी इतना भाग्य नहीं जितना भाग्य मेरे बच्चों का है। जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है, तो अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, पूरे कल्प में ये स्टेटस किसी को भी नहीं मिलता सिवाय इस समय के। जिसने इस समय इस स्टेटस का आनंद लिया वो हर कल्प लेगा, और जिसने इस स्टेटस का आनंद अब नहीं लिया वो किसी भी कल्प में नहीं ले सकता। सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो, अनहद बेहद वंडरफुल गीत है ये। वह भाग्य विधाता बाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य, ये गीत ये खुशी ये आनंद आप ही गा सकते हो और कोई दुनिया में गा ही नहीं सकता, क्यों उन्हें भाग्य विधाता का पता ही नहीं और अपने श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव ही नहीं कि इन्हें भगवान आके पढ़ाता है, परम धाम से परमात्मा आकर पढ़ा रहा है, ये पता ही। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है किनके कानों में, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के कानों में। वो आप यदि आपके कानों में ये गीत बजता रहता है कि मैं कितना श्रेष्ठ कितना भाग्यवान हूं जो कल्प कल्प स्वयं भगवान आकर मुझे पढ़ाते, मैं उन कोटों में कोई कोयों में कोई आत्मा हूं जिसे भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं और अनगिनत बार पढ़ा चुके हैं और अनगिनत बार हर कल्प पढ़ाएंगे। तो कितने भाग्य है भाई, बाप बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी 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 बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने की बजाय मर्ज कर देते हैं, भूल जाते हैं और देह समझ कर देह की दुनिया में खुशी खोकर दुखी हो जाते हैं, खुशी खोकर दुखी हो जाते हैं। जब आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या क्या कहेंगे, ड्रामा, तो क्या कहेंगे, ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं, आप भी सभी चाहते यही हैं। लेकिन ये लेकिन जो आ जाता है बीच में आ जाता है ये लेकिन, क्या करें, किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बच्चा कहता है कि मैं बाप समान नहीं बनूंगा, सभी कहते हैं बाप समान बनूंगा, बनना ही है मुझे, बाप समान बनना ही है, लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है बहुत अच्छा है, फिर ये कभी इमर्ज रूप और कभी मर्ज रूप क्यों? कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है, क्यों? कारण क्या? कारण है क्यों भूल जाता है? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रू रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? लक्ष्य है पाप समान बनने का, फिर वो लक्षण क्यों नहीं? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हो, नई बात नहीं है, आप इतने होशियार बच्चे हो, पुराने बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, लक्की बच्चे हो, कल्प कल्प वाले बच्चे हो, फिर भी बाप दादा तुम्हें रिवाइज करा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि तुम्हें नहीं पता, तुम जानते हो, परंतु वो मर्ज हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं। घर जाकर आप रिवाइज नहीं करते हो, मन मना भव नहीं करते हो, इसलिए क्लास में बैठा करके आपको मन मना भव कराते। ऐसे होते ना बच्चे घर में ना पढ़ के आए, फिर टीचर की सिरदर्दी हो जाती है कि यहीं बैठकर मेरे सामने बैठकर करो सवाल। ऐसे बाप दादा ने देखा तीन बातें हैं। एक है सोचना, एक है संकल्प करना, और दूसरा है बोलना। सोचना और संकल्प करने में क्या अंतर है? सोचना माना कोई भी बात करें या ना करें, उस पर विचार चल रहा है, ठीक है नहीं? और संकल्प का मतलब है चाहे वो ठीक है चाहे गलत है, करना है बस। जब डिसीजन हो जाता है तब उसे संकल्प कहते हैं। जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक वो सोचना है, और जब फैसला हो गया तो वो संकल्प हो गया, और जब कह दिया बोल दिया वो कर्म हो गया,
संकल्प हो गया,
संस्कार
बन गया,
कर्म हो गया, ठीक है ना? मतलब कर्म हो गया ना, बोलना, वर्णन करना, और तीसरा कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। अब बोलने के बाद भी, बोलना भी एक कर्म है, परंतु सूक्ष्म कर्म है, छोटा कर्म है, ठीक है नहीं? फिर जब उसे वर्णन किया, बार बार कहा कि ये करेंगे ये करेंगे, और फाइनली वो कर दिया, तो एक कर्म में लाना। तो तीनों को समान बैलेंस कम है। सोचते हैं, संकल्प भी करते हैं, कहीं बोलने में कमी हो जाती है, वर्णन कमी में करने तक आते आते मामला गड़बड़ हो जाता है। सोचने तक संकल्प करने तक रह जाता है, पर तू बोलेंगे कहते बोल दिया तो फिर करना पड़ेगा, इसलिए अपने अंदर ही रख ले, जब मौका होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर लेंगे। संकल्प को वापस सोचने तक में रोक लेते हैं, और जब बोल दिया और कर दिया फिर फाइनल हो जाते हैं। जब बैलेंस होता है तो तीनों का बैलेंस कम है, बोलते ज्यादा है करते नहीं है, सोचते ज्यादा है करते नहीं है, बोलते ही नहीं है, वर्णन ही नहीं करते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अधूरी रह जाती है, जिसलिए वो पूरा नहीं हो पाता। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। निश्चय भी मर्ज, बाबा में पता नहीं बाबा है या कोई और है, कोई और आत्मा तो ना के पढ़ा देती होगी, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पता नहीं बाबा क्या कहे, बाबा को भी भूल जाता है कि पहले ये कहा था आज ये कह रहे हैं, अनेक प्रश्न खड़े होकर डाउट खड़ा करके निश्चय और नशे को दबा देते, मर्ज कर देते। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है, बोलने में भी रफ्तार और नशा वे भी 75% ठीक है, बोलने में मेजोरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो दो बातों में ठीक है लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या कारण है जानते हो? हाँ या ना कुछ तो बोलो, नहीं जानते हो तो बाबा कहते बताऊं, जानते हो तो चलो आगे चलो, जानते हो तो आगे चले बाबा, नहीं जानते हो तो फिर बतावे, रिपीट करे, बता देवे। जानते बहुत अच्छा है, अगर किसी को भी कहेंगे ना इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे आप, और बड़े निश्चय और नशे और फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं, बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं कि तुम क्लास में क्या बोलते हो, सारा सुनता रहता है बाप, क्या क्या बोलते हो, फिर मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं बाबा, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, आपके कोर्स का रिवीजन चल रहा है पेपर से पहले। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है, और बाप दादा समझते हैं कि कारण का निको निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन लेकिन जो है ना, सहज को मुश्किल बना देता, मुश्किल है नहीं बना देते हैं, क्यों? नशा मर्ज हो जाता। कौन सा नशा मर्ज हो जाता है? आत्म स्मृति का, परमात्म स्मृति का, कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ये नशा भूल जाता है, देह वाले रिश्ते में आ जाते हैं, देह वाले रिश्ते में आ जाते हैं, ये नशा भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान है। मुश्किल है नहीं बना देते हो, नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनाते हैं, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार, लेकिन आया कितने बार, लेकिन आया, ये लेकिन ही विघन डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है, बाप को अच्छा नहीं लगता है लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय चलती है? लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए ये मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता, जब वो आदत बन जाती है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरी आदत है, चाहे वो चाय पीने की, चाहे कुछ भी, कोई भी आदत आपने देह के संबंध से, देह के हिसाब से बना दी है, आप उसे छोड़ना भी चाहते हो, आप जानते भी हो कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, परंतु क्या करूं, ये तो मेरी आदत है, ये तो मरने के साथ ही जाएगी, ये तो छोड़ नहीं सकता। बाबा को छोड़ सकता परंतु इस आदत को क्या करें, क्या करूं बताओ, ये तो एक आदत बन गई है ना, मरने के साथ ही जाएगी ना। आप बुरा नहीं मानना, साथ वालों को कहते मेरी आदत है, बुरा मत मानना। संस्कार बना कैसे, बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी हो जाते हो, फिर कहते हो क्या करें, संस्कार हैं, तो संस्कार सहज ना चाहते हुए तो चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, भाई झूठ कोई बोले ना, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, फिर हाँ मैं क्या करूं, मेरी आदत है, सच बोलो, फिर तो मैं आप गुस्सा नहीं करूंगा, थोड़ा समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है, क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया, अवगुण को अपनी आदत बना ली, बुराई को अपनी आदत बना ली, अच्छे गुण को क्यों नहीं बनाया। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति है तो अज्ञान की शक्ति क्रोध की बहुत, क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो, माफ कर देना आगे से नहीं होगा और आगे और ज्यादा होता है। माफी मांगेंगे, भाई गलती हो गई है, आगे से मैं नहीं करूंगा, परंतु फिर कर देते हैं क्योंकि आदत है ना।
आपने गलती करी है तो माफ ना, अगर उसने गलती करी है तो माफ कर,
कर दो, वो तो ज्ञान आएगा तब ना, कैसे कर दूं माफ, फिर ये आता है ना, कैसे कर दूं माफ, तो माफ करने वाला संस्कार बन जाए ना। कहना तो बहुत आसान है, बाबा कहते भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हो, परंतु उसको करके दिखाओ ना, क्योंकि संस्कार बना दिया है तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बना, उसको आदत बना दो। संस्कार रूप, ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं, क्रोध या सहन शक्ति? ब्राह्मण के कौन सा संस्कार होगा, क्रोध होगा या सहन शक्ति होगा? शांति की शक्ति ये है ना, तो अवगुण को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया कि बाहर निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलूंगा, गंदे संस्कारों को कूट कूट करके अंदर भर दिया धुरमुट के साथ अच्छी तरह, जरा भी हिलने नहीं देना, मजबूत,
बिल्कुल बारीक रूढ़ी कर,
जो ना चाहते भी निकलता रहता है, ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है? ये सदा याद रखो, वे तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, प्राय माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते, बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों क्यों कर देते हो? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, या बाप किससे प्यार है? बाप अच्छा लगता है या रावण अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। कौन सी स्याही? निश्चय की स्याही। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते कितना प्यार है, तो क्या कहते हैं बच्चे? आकाश से भी ज्यादा प्यार है। ठीक है, बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे, कितने
भोले बच्चे।
फिर भी कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? कि दिल से अगर एक बार भी, दिल से, वैसे तो बोल देते हो, दिल से मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं, जो भी हो जैसे भी हो, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बराती बनकर नहीं चलना। क्या बनकर चलेंगे फिर आप? क्या बनेंगे? दुल्ला तो एक ही है भैया, दुल्ला तो ना मिले दूसरा, दुल्ले वाले सीट तो नहीं मिलेगी। नहीं, दुल्ला तो फिर पीछे पीछे चलता रहेगा। यहाँ तो सजनी चल सकती है साथ, वो बन नहीं सकते, वो नहीं बनेंगे। चाहे हमें क्या बोलते हैं, जहन्नुम की राजाई दे दे, जन्नत की राजाई नहीं चाहिए हमें। बराती, घराती, साथी और सजनी, सबसे साथ तो वो चलेगी जो सजनी बने, जो बाप समान बनेगी,
वो सबके साथ चलेगी,
वो शिव बाबा के साथ चलेगी। सब नहीं, वो तो शिव बाबा के साथ चलेगी ना। दुल्ला शिव बाबा है, और जो बाप समान बनेगी वो तो दा बाबा के साथ चलेगी, और थोड़ा कसर रह गई तो साथी बन जाएगी, और कसर रह गई तो घराती बन जाएगी, और कसर रह गई तो बराती बन जाएगी, और कसर रह गई तो पीछे पीछे, रुक जा मैं भी आ रही हूँ। रुक्का मारने वाली बंट। बराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सारे खुश हो जाते हैं, वाह बाबा ने तो लॉटरी खोल दी, हमें अपनी सजनी बना लिया, हम बाबा की सजनी बन करके जाएंगे। फिर आगे अपने ऊपर हंसी भी आ रही है ना, हम किस लायक है, सजनी बनने वाले हैं हम, यानी अपने ऊपर हंसी भी आ रही है ना। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो चेहरा लाल पीला हो जाता है, लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है, कौन सी, पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे। कोई कोई गसिया गपोड़ा भी लगाते हैं, गसिया कहते हैं, गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है, क्रोध, देह अभिमान का तो टोटल है, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध विकार नहीं है, ये शस्त्र है, हथियार है, विकार नहीं है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। गुस्सा जो है वो ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। भाई उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो फेमस हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानी होती है। कहने वाले कहते हैं देखो, देख लिया, ये भगवान से पढ़ने जाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भी क्रोध आता है, क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, क्रोध अग्नि रूप है ना, वे अंदर खुद भी जलता रहता और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला होता रहेगा, बाहर से लाल पीला नहीं होता,
अंदर से
लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वे काला होता है, अंदर से क्या हो जाता है, काला। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है, वो क्या है, कहने में समझने में ऐसे समझते हैं वा कहते हैं कि कहां कहां सीरियस होना पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वे अपने से पूछो, बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने की छुट्टी दी है? कानून अपने हाथ में लेने की छुट्टी दी है? नहीं थी। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले ला उठाओ, क्रोध नहीं करो? ला उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो कानून अपने हाथ में लेता है जो निमित आत्माएं हैं वे भी ला उठाते नहीं है, लेकिन उठाते नहीं है, लेकिन उनको ला रिवाइज करना पड़ता है। उनको ला रिवाइज करना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन नियमित है तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। नियमित बनने वाले को कितनी छुट्टी है? इतनी छुट्टी है कि वो अपना रिवाइज करे, सुधारे। सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों को के लिए बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं कि वायदा तो ये करते और करते ये। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया है, तो अभी से ये बात ये कहना तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो उसे तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई समय के हिसाब से। इसलिए आज से क्रोध का क्या करेंगे, क्या करेंगे क्रोध के लिए? बच्चों ने जवाब दिया, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे, गुस्सा ना आ जाए कभी भी। बाप दादा अभी ये बार बार सुनने नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, फिर आ जाता है लेकिन, क्या करें? चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो बाबा, बस आप समझा दो इस माया को, हमारे पास ना आए। हम शिव बाबा के बच्चे नहीं है, हम तो कृष्ण के बच्चे। क्रोध के, आप ही माया को समझा दो बाबा, आप समझा दो। तो क्रोध को समझा दो तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे, प्रारब्ध बच्चे लें, ऐसा बाप है कोई? सब बाप नहीं है। तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, ये भी मेहनत बाप करे, तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं, बताओ बताओ या नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट ना हो क्या करें, हो जाता है, सर्कमस्टांस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे किसको समझाने की कोशिश करते हैं? बड़े होशियार हैं, क्या कहते हैं? बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना, अभी दोष किस पर है? दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते, वो बात थी ना ऐसी, उसके कारण ऐसा हो गया। जिस बात पर दोष रखा वो बात तो फिर कब आएगी? 5000 साल के बाद। ये संकल्प भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहे हैं? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाते हैं। क्यों? गुस्सा कब होता है? जब इच्छा पूरी नहीं होती। लोभ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, ये क्या अपने आप को अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कहे करके बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे, पूछ रहे हैं अभी, सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया और कैमरे वाले ने सबका फोटो। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं, और फिर जब रिजल्ट देखेंगे फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। फूल वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंखें बंद करना, ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंखें बंद कर सकते। तीसरा करता है या दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना, कोई भी करो। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई मां विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए ऐसी महान आत्मा प्रति अंतर्मुखी बनाना है। हंसी की बात सुनाएं, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? कौन कह रहे हैं बुरा तो नहीं लगता? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी समय प्रति समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देख, और कमजोरी को बहुत ज्यादा देखते हैं और फॉलो करते हैं, एक दो से वर्णन भी करते हैं। क्या है, सबको देख लिया, महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों की को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे। तो धोखा खा लेंगे, इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करनी है। अच्छाई की रेस करो और बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल अडोल। हाँ, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा मिलती हैं महारथियों को तो मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंखों को इस बात के लिए नहीं राजी करना। मन की आंखों को इस बात के लिए नहीं खोलना है, बंद रखो। सुनने की बजाय मन को अंतर्मुखी बनाओ, अपने बारे में बैठकर स्वयं सोचो। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवादारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपना आप समान बनाने के लिए लक्ष्य और लक्षण को समान लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ये भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाव। क्या बनो? शक्तिशाली सेवाधारी भाव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है, डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम 21 जन्मों का वसा ले रहे हैं। खुशखबरी सुनाओ कि 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु के भय से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाव बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं सहज ही मिले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।